एक प्रश्न है पहले सभी से, देखते हैं कौन मुरली ध्यान से सुनते हैं। नजदीक कर, विश्व महाराजन बनना है तो, अरे ठहरो पहले इधर पूछना, कलश मातहनों के ऊपर है, भाइयों के ऊपर अभी नहीं आया है, ठहरो, ठीक है, भाइयों का सुन लिया आप लोगों ने, नहीं, अच्छा, विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को प्रकाश दो। सोचते हैं सभी इस पर कुछ, ये सोचते हैं ये काम तो मधुबन वालों का है, हमारा तो नहीं। मैं सोचता हूँ ये बातें सुनकर, सदा ही सुनते हैं, बाबा ने हम सबको कितना ऊंचा उठाया, कह दिया तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, जो अपना भी कल्याण नहीं कर सकते थे, जो कुछ सोचते नहीं थे इस बारे में, हमें काम दे दिया तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, और यदि हम सकाश देने की सेवा में व्यस्त हो जाएं तो क्या होगा, व्यर्थ से मुक्त और एक बड़ी चीज सुंदर, विघ्नों से भी मुक्त। ये सब बाबा के महावाक्य हैं, समझती है माता, ठीक है, आपके परिवार में कोई विघ्न रहेंगे ही नहीं यदि इस महान सेवा में समय देने लगे, क्योंकि ये संसार में सबसे बड़ा पुण्य है। वैसे हम किसी दो चार व्यक्तियों को कुछ दें, कुछ उनके लिए अच्छा करें, कुछ पुण्य कमाएं, लेकिन एक साथ लाखों करोड़ों को मदद करें, कितना बड़ा पुण्य हो गया। बाबा ने कभी एक बहुत अच्छी बात कही है, तुम कल्प वृक्ष के मास्टर बीज हो, बीज तो शिव बाबा है, और पूर्वज हो, सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी आत्माओं को मिलता है, चाहे किसी भी धर्म की हो वो, इसलिए उसका फल तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। तो सबसे बड़ी सेवा सकाश देने की है, सभी इस पे विचार करेंगे, हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है, व्यर्थ से मुक्त करना है, योग युक्त करना है, करना है या नहीं, जीवन का सार इसी में है। आप भी देख रहे होंगे, मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता चलता है, संसार विघ्न और समस्याओं से घिरता जा रहा है, अगले 5 साल कैसे होंगे इस धरा पर, ये हम सब भी साक्षी होकर देखेंगे। अनेक लोग, युवक, पढ़ने वाले युवक, आप सबके बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होती संसार में, पढ़ाई में उनको बहुत कठिनाई हो गई, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले, 11वीं में पढ़ने वाले कन्याएं डिप्रेशन का शिकार हो रही है। मैं पूछता हूँ, मेरे को फोन आते हैं, कारण कुछ समझ में आता है, मैं कुछ उनकी प्राइवेट बात भी पूछता हूँ, कहना ही हम बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी डिप्रेशन हो रहा है। एक माँ ने आज फोन किया, मेरी लड़की का ये हाल है, 1st क्लास स्टूडेंट रही, अभी 12वीं क्लास में आई है, इसको मेडिकल में हमें भेजना था, ये कहती है मेरा तो पढ़ने को मन ही नहीं करता। फिर मैंने उससे बात की, क्या ये सच है, मैंने और भी ऐसे प्रश्न पूछे उससे, कहा नहीं मैं तो बहुत चरित्रवान हूँ, मेरी बुद्धि कहीं नहीं गई है, पता नहीं मुझे 2-3 माह से क्या हो गया है, मेरा पढ़ने को मन नहीं करता है, तो खाने को मन करता, मैंने कहा टीवी देखती हो, कहा टीवी देखने को मन नहीं करता। मैं समझ गया डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। मैंने फिर उसकी माँ को समझाया, तुम इस पे दबाव न डालो, अब पढ़ाई का इसको पहले ठीक करो, विधि बताई कुछ, उसको इलाज भी करा उसका। तो संसार का हाल दिनों दिन बिगड़ रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बच्चे ही तो छोटे हैं ना, आत्मा तो वानप्रस्थी है ना, घर जाने की तैयारी में है, ठीक है ना, बट आत्मा तो बूढ़ी हो गई ना, 5000 साल की लंबी यात्रा तय करके आए हैं सब। इसलिए सकाश देना परम कर्तव्य है। जो आप में से घर गृहस्थ में रहते हैं वो प्लान बनाओ, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, ज्यादा नहीं, सकाश देनी है। और जो हमारे समर्पित भाई बहने हैं तो थोड़ा ठीक हो जाओ भाई, आगे भी हो जाओ, थोड़ा इधर को भी हो जाओ, थोड़ा सा 4 इंच बस। जो हमारे समर्पित भाई बहने हैं यहाँ बैठे हैं बहुत, उनको अब संसार की समस्याओं को देखते हुए मन से अपने को तैयार कर देना चाहिए कि हमारा योग दातापन का योग बन जाए। बस बाबा से ले रहे हैं और संसार को दे रहे हैं। आप में से भी जो करना चाहे, हम जुड़े हैं बाबा से और हमसे जुड़ी हैं संसार की करोड़ों आत्माएं। चित्र बनाओ जरा अपना, हम जुड़े हैं ऊपर और नीचे वाले सब जुड़े हैं हमसे। सुख धागे बनाओ जरा, करोड़ों धागे वाइब्रेशंस हमसे फैल रहे हैं, दुनिया की अनेक आत्माएं ऐसे तो सभी, पर हम कहें करोड़ों आत्माएं हमसे जुड़ी हैं, वो हमारी ओर प्यासी नजरों से देख रही हैं। कौन हैं हम उनके और कौन है इष्ट देव देवियां, हम उनके पूर्वज भी हैं, इष्ट देव देवियां भी हैं। तो माताएं केवल अपने बच्चों की माँ नहीं, दो उत्तर माताएं कहा नहीं जा रहा, जगत माताएं क्या है माता जी, नहीं निकल रहा मुख से, चलो सोच लेना, जगत के लिए सोचो अब। अपने बच्चों के लिए तो बहुत सोच लिया ना, और कहीं कहीं बच्चों ने बहुत तंग भी कर दिया। एक माता बेचारी फोन कर रही, रोने लगी, क्या भगवान से बड़ी मिन्नत मांगी थी लड़के दो, अब लड़के पैदा हो गए, आंख में दम करके रखा है, लड़कियां ही ठीक है हमारी। मैंने कहा था तो तुम्हारी गलती, भगवान को कहती चरित्रवान लड़के दो, इतना ही मांगा था लड़के चाहिए लड़कियां नहीं। पता नहीं माताओं को ये माया कहाँ से है, लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के आएंगे कहाँ से भला। पर माताएं यही कहती हैं, हे भगवान लड़के देना लड़कियां नहीं। मैंने कहा इसमें जोड़ दिया करो अब, चरित्रवान बच्चे देना। पर क्यों बच्चे बिगड़ रहे हैं, सबके नहीं, यहाँ तो अच्छे बच्चे बैठे हैं बहुत चरित्रवान, इनके चेहरे तो चमक रहे हैं, और दुनिया में बहुतों के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं बताओ, एक अच्छा उत्तर। मैं एक सूक्ष्म बात कहना चाहता हूँ, ये तो निश्चित है, टीवी से, फिल्मों से, नेट से, मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, पर एक कारण और है, वो मैं बता तो देता हूँ पर भाई लोग उसे सुन के थोड़े से उदास हो जाते हैं। उदास न होना, जिन बच्चों की पालना गलत धन से हो रही है, गलत धन, धन ढंग नहीं, धन पैसा, उनके बच्चे बिगड़ेंगे जरूर। अब ये अलग बात है कि ईमानदारी के पैसे से आजकल काम चलता नहीं, वो सब आप जानते हैं, महंगाई हो गई, पढ़ाई महंगी, तो हर चीज महंगी है, लेकिन ये सिद्धांत अविनाशी सिद्धांत है। जैसा भोजन बच्चों को दिया जा रहा है उसका उनके चरित्र पर बुरा प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना। तो माताओं का और एक कर्तव्य है, योग युक्त भोजन खिलाना। सुनते हैं ना सब महिमा इसके, मूल्यों में खूब आता है। माताओं का काम है, योग न लगे अपने किचन में बाबा का आह्वान करो, आ जाओ, ये तुम्हारा भंडारा है, हम तुम्हारे लिए भोजन बनाती हैं, अब यहाँ बैठो, इस बीच में अभ्यास करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ये पवित्र भोजन आपकी सभी चीजों को ठीक कर देगा। गड़बड़ तो है ही कलयुग के अंत में, अच्छाई तो मुश्किल है ना मिलना, हर चीज जहरीली हो चुकी है, धन भी पाप का है, मन भी पाप से भर गया है, कर्म भी पाप के हो गए हैं, लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और अपने को बड़ा पुण्य आत्मा समझते हैं, है ना। ये मुर्गे खाने को तो पाप मानते ही नहीं कि वो तो बने ही हमारे लिए है, मिलते हैं हमें ऐसे लोग उसे पाप नहीं मानते, और ज्यादा कहो तो कहे सभी खा रहे हैं ना, पंडित खा रहे हैं, पंडित ही खा रहे हैं तो हमें क्या तकलीफ है। जो धर्म के संचालक थे, प्रचारक थे, जो विद्या के अधिकारी माने जाते थे, मैंने कहा वो ब्राह्मण नहीं है, भगवान ने उनको क्या कह दिया, सब शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण केवल वो जो ब्रह्मा के बच्चे, जो भगवान के बच्चे बने, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया है, विचारों को पवित्र किया है, जो इस राह पे चल चुके हैं कि हमें अपने जीवन को महान बनाना है। युवक बहुत बैठे हैं छोटे, मैं बीच में जोड़ देता हूँ, टॉपिक नहीं है ये मेरे पास आज, बुरे संग से बचेंगे, बुरी आदतों से बचना है। स्पष्ट होता होगा उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को कोटा में भेजते हैं मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, IIT की एंट्रेंस की तैयारी करें, और बच्चा वहाँ व्यसन में पढ़कर सुसाइड कर लेता है, कैसा लगता होगा। एक माँ बाप बेचारे ज्ञान वाले कोटा में, मैं गया पिछले साल, मेरे पास आए, हमारा लड़का 19 साल का हमने यहाँ भेजा था, वो गाँव के हैं, भर्ती करने आए थे, किसी व्यसन के अधीन हुआ और अभी एक मास पहले उसने सुसाइड कर लिया, हमें एक ही बच्चा था। तो देखो कैसा होता है, सब कुमार इससे बचेंगे, जीवन छोटी यात्रा नहीं है कि कल खत्म हो जाएगा, खा पी लो, मस्त रहो, जीवन एक लंबी यात्रा है। कन्याओं को भी मैं कहता हूँ, खुले आम कहता हूँ आजकल, बचो किसी से भी प्यार करने में, प्यार मनुष्य को अंधा बना देता है, उन्हें पता नहीं चलता जीवन एक लंबी यात्रा है, वो दो चार दिन में, दो चार मास में खत्म नहीं हो जाएगी। फिर जब डाइवोर्स होता है, जब एक साल में ही अलग होते हैं, तब क्या हाल उनका होता है, इसकी कहानी मेरे बाद बहुत आती है फोन पर, रोज रोती है कन्याएं, हमने ये क्या कर लिया। तो बचेंगी सब माताएं अपने कन्याओं को क्या देंगी, क्या, बहुत प्यार। ये माताओं की गलती हो रही है कि वो अपनी बच्चियों को डांटती हैं घरों में, तो ये नहीं करती, ये नहीं करती, वहाँ जाती है, प्यार दो, प्यार में वो आपके वश में रहेंगी, आप उन्हें अच्छी अच्छी बात सिखा सकेंगे, बचपन से उनमें अच्छे संस्कार डालो, नहीं तो वो आजकल गलत राह पर जा रहे हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, समय की, माताओं की नहीं, आपकी गलती नहीं। माताएं बहुत ध्यान से सुन रही, मैं देख रहा हूँ, सोच रही हमारी सारी गलती है, ऐसा नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये गलती समय की है। ये कलयुग का भयानक प्रभाव चारों ओर छा गया है, सभी के हिसाब किताब और मनोविकार अति में पहुंचने की तैयारी में, अति माना बिल्कुल समाप्ति की ओर। तो ये 5-10 साल अगले संसार के लिए बहुत भयानक हैं, अगले 5 साल ही। मैं तो लोगों को ऐसे ही कह देता था कि अगले 5 साल में संसार का हाल बुरा हो जाएगा, विनाश नहीं, असली विनाश हो जाएगा, जिसमें मनुष्य जिंदे तो रहेंगे लेकिन जीने का आनंद उन्हें नहीं होगा। लेकिन अब मुझे दूसरों से सुनने को मिलने लगा है, 5 साल तो छोड़ो, लगता है 2 साल में ही हाल खराब हो जाएगा, तेजी से बिगड़ रही है मनोस्थिति मनुष्य की, इसलिए हम सभी पूर्वजों को सकास देना है, बोलो तैयार हैं, 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, बहाना नहीं, टाइम नहीं है, हम तो बहुत बिजी हैं, हम तो नौकरी में हैं, ये नहीं देना है। पूछता हूँ भाइयों से, देना है? अगर संसार में इस दुखों की आंधी को, इस काम वासना के तूफान को रोकना है तो सकास देनी है। हम जानते हैं ये कलयुग का अंत आ गया है और इन सब चीजों की अति है, ज्ञान की दृष्टि से हम जानते हैं। बाबा ने बताया हुआ है कि अंत में पांचों विकार और पांचों तत्व क्या करेंगे, फुल फोर्स से आक्रमण करेंगे सब पर, ब्राह्मणों पर ही नहीं सारे संसार पर। ऐसे में अपने को भी सुरक्षित रखना और संसार को सकास देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। एक व्यक्ति इंग्लैंड में गया, मुझे एक जगह मिला, वो ज्ञान वाला नहीं, मैं नेचर केयर सेंटर में था तो वो भी थे, वो डॉक्टर है, तो कहा मैं लंदन में गया, अपने मकान था थोड़ा सा 3-4 मंजिल का ही, ऊपर छत पे चला गया तो नीचे देखने लगा, कहा वहाँ की सीन देखकर मैं जल्दी नीचे आ गया, तब मुझे पता चला कि भारत कितना महान है। कहा मैंने कान पकड़ लिया, अब के बाद लंदन में नहीं आऊंगा, ये मैं नॉन पीके की बात कर रहा हूँ, वो बात हम क्लास में तो नहीं सुना सकते जो उसने कहा, मतलब काम वासना की आंधी वहाँ, वो देश वो कल्चर तो नष्ट होने को आई है ना, नष्ट होने वाली कल्चर पर काम वासना का सबसे ज्यादा प्रभाव है अब, इसलिए भारत सबसे महान है, जहाँ पवित्रता अभी तक भी जिंदी है, वहाँ तो मर चुकी बहुत साल पहले। जब हमारे यहाँ विदेशियों ने आना शुरू किया तो बताते थे वहाँ के लोग जो यहाँ थे कि हमारी डिक्शनरी में सेलिबेसी शब्द कर दिया गया ब्रह्मचर्य, और अगर कोई इसकी बात करता है तो लोग उसे क्रेजी समझते पागल। उन वैज्ञानिकों ने इतना दूषित प्रचार किया, जिसे लोग परफेक्ट विद्या मानते हैं ना मनोविज्ञान को, मैं उनको कहा करता था तुम्हारा मनोविज्ञान बिल्कुल जहरीला मनोविज्ञान है, इसमें कुछ दम नहीं है, और आज वो इस बात को जानते हैं कि मनोविज्ञान की जो मान्यताएं थी उन्होंने मनुष्य को मानसिक रूप से बिल्कुल बेकार कर दिया है। इसलिए वहाँ आप जाएंगे तो डिप्रेशन के जितने लोग मिलेंगे उतने और कहीं नहीं। भारत में क्या मिलेगा आपको, बाजार में चले जाओ, खुशी का माहौल, ये खुशी का माहौल भारत के सिवाय क्रिश्चियन देशों में कहीं नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य बात है। इसलिए भारत में भगवान आते हैं, मैं हंसी में क्या करता था, यही इसी हॉल में अंग्रेज लोग आते थे ना, पूछते थे हमारे देश में भारत क्यों नहीं आते, भगवान क्यों नहीं आते, मैं एक हंसी की बात क्या करता था ममता बहन, मैंने कहा अगर तुम्हारे देश में भगवान आए ना तो जब भोग खिलाओगे ना तो केवल डबल रोटी रख दोगे आगे। वो देखते थे ना बाबा के आगे भोग रखा है, डब्बियां डब्बियां गिनी भी नहीं जा सकती, 20-25 हैं, तो कई उनमें से बड़े तेज खराक होते हैं ना, भगवान को इतना सब क्यों खिलाते हैं, वो थोड़ा ही खाता है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ आए तो तुम तो सैंडविच के अलावा बॉयल सब्जी, भगवान भी कहेगा मैं यहाँ नहीं आऊंगा कल से, मैं भारत में जाऊंगा अपने, जो खाता नहीं उसको प्यार अर्पित करते है ना, अपना भोजन नहीं, भोजन तो एक माध्यम है अपना प्यार अर्पित करने का। तो भारत सचमुच महान है और भारत से ही ये वाइब्रेशंस सारे संसार को जाने हैं, इसलिए हम सभी 10-10 मिनट ये विश्व की सेवा करें और इसके पुण्य से आपका पूरा परिवार निर्विघ्न रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, तैयार हैं माताएं या अपने झंझटों में बिजी हैं, बच्चों से बहुत तंग हैं आजकल माताएं, मेरे पास माताएं आती है ना समस्याएं लेके, मैं समझता हूँ इनकी तो समस्या नहीं है इनके बच्चों की होगी, आते ही वही बात करते हैं, मेरी 15 साल की लड़की ये हो गया, मेरा 20 साल का लड़का ये हो गया, अब इसको आप नहीं संभाल पाएंगे, मुझे याद रहता है बाबा का एक सूक्ष्म महावाक्य, नोट कर ले जो नोट करना चाहते हैं। सभी के विक्रम विनाश कराने की गोडली मिशनरी बड़ी सूक्ष्म है, इसके रहस्य को जान लेना। सभी के विकर्म विनाश कराने की गोडली मिशनरी बहुत सूक्ष्म है, और वो मिशनरी चालू हो गई है। हम संगम युग के उस काल में पहुंच गए हैं जहां एक बड़ा परिवर्तन इस संसार में होने जा रहा है। देखो, पांच पांच साल में कल्चर बदली है, मैं इसे कहता हूँ युग बदले हैं। अगले पांच साल में बहुत युग बदल जाएगा, इसलिए क्या सोचना है सबको। आप सब बहुत भट्टी के भाई बहने भी यहाँ बैठे हैं, सभी चिंतन करना हमें अपना संगम युग कैसे बिताना है, कैसे बीत रहा है और कैसे बिताना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम छोटी मोटी उलझनों में उलझ कर रह गए हैं, ऐसा तो नहीं संसार की प्राप्तियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ज्ञान योग के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक छोटा सा समाचार सुनाओ, एक भाई ने फोन पत्र लिखा, आज ही मैंने उसको फोन करके उत्तर दिया। मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, पत्र एक पेज पे था, धन ही धन, लास्ट में लिखा धन ही धन, मुझे बहुत पैसा चाहिए। मुझे भी हंसी आई उसका पत्र पढ़ के। फोन किया मैंने, मैंने पूछा ज्ञान में कब से हो, एक साल से हूँ। अच्छा, बस। मैंने कहा धन क्यों चाहिए, धन आएगा तो बाबा की बहुत सेवा करूँगा। मैंने कहा जब तुम्हारे पास धन आएगा ना तो बाबा को तुम एक तरफ रख दोगे। कैसे कैसे होगा, मैं तो धन चाहता ही हूँ बाबा के लिए। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं बाबा के पास कितना धन है, जो इस संसार को हीरो मोतियों से भर के जाता है, सोने के महल बन जाते हैं, तीन युग तक कोई कमी नहीं रहती, उसको धन थोड़ा ही चाहिए। कहा पर सेवा बिना धन की कैसे होगी। मैंने कहा बहुत धनवान है वो सेवा बिल्कुल नहीं करते, तुम कैसे करोगे। मैंने कहा इतना नफा अगर तुम्हें भगवान से सभी खजाने प्राप्त करने का हो जाए तो धन तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। जिसे दिखाया धन लक्ष्मी विष्णु के चरणों में, वो लक्ष्मी नारी नहीं धन, जिसकी स्थिति विष्णु समान, धन उसके चरणों में। धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अविनाशी धन के पीछे भागे तो धन आपके पीछे पीछे भागेगा। समझ लें सभी इस सीक्रेट को, इस रहस्य को। और बाबा ने वायदा कर लिया है, तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, इच्छाएं नहीं आवश्यकताएं। मुझे बात बहुत प्रिय लगी थी। ओम शांति भवन में बाबा आया था और अव्यक्त बाबा, भाई बहुत लोग आए, भाई लोग बहुत थे, शायद भट्टी थी उनकी, तो मुरली चल रही थी, अपने घर को बाबा का यज्ञ समझो। ये बहुत सुंदर पॉइंट है, साकार मुरलियों में भी आई है। तुम्हारे भंडारे और भंडारी भरपूर रहेंगे। तब बाबा ने कहा तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। तो कोई भाई आगे बैठे थे, उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा हमारी तो पूरी होंगी लेकिन हमारे बच्चों की। सब तो ऐसे ही बैठते थे ना, पूछ सकते थे बाबा से। बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, तुम्हारी बच्चों की भी आवश्यकताएं पूरी होंगी। सब जोड़ा था इच्छाएं नहीं। तो भगवान हमसे वायदा करता है, तुम्हें भोजन भी मिलेगा, तुम्हारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, तुम केवल याद करो, अभी बाबा की महावाक कुछ दिन पहले ही, जो बच्चे मेरे अर्थ अपना सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में लग जाते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। बैठे हैं ना बहुत यहाँ भाई बहने, जो अपना सब कुछ छोड़ के बाबा के अर्थ उसकी सेवाओं में लग गए, आप अपने ढंग से कर रहे हैं गृहस्थ वाले, और समर्पित भाई बहने अपने ढंग से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है ना, भगवान इस धरा पर आया और उसके अर्थ जीवन को लगा दिया, तो वो सचमुच महान है या नहीं, है ना? तो फिर से वही बात कहता हूँ, यहाँ भट्टी में आकर अभी चिंतन करना, मेरा संगम युग कैसे बीत रहा है और मुझे अपना भविष्य का संगम युग कैसे बिताना है। देखो बाबा एक बात मूल्यों में बहुत कहते हैं, अभी कुछ लहर बहुत चली है ना साक्षात मूल्यों में, भाई भाई की दृष्टि चली है ना, तो हमें साथ साथ वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक लहर बहुत चलती है, अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये बहुत बड़ी चीज है। तुलसीदास ने भी रामायण में इसके लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि अंत में भी राम को स्मरण नहीं कर सकोगे अगर लंबे काल से उसका स्मरण नहीं होगा। अंत में क्या याद आता है मनुष्य को? जो लंबा काल उसने याद किया हो वो ऑटोमेटिक याद आएगा, और अंत काल की स्मृति ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करती है। ये पुनर्जन्म के लिए भी बहुत अच्छी बात है, जब आप दूसरों को समझाएंगे मनुष्य पशु योनि में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? क्योंकि मनुष्य को अंत काल में जैसे संकल्प होते हैं उसके आधार से उसका अगला जन्म होता है। तो क्या किसी को संकल्प होते हैं पशु योनि के? कुछ नहीं होते ना। एक बार हमारे ज्ञान सरोवर में वकील जजों का प्रोग्राम था, तो वो हमेशा मुझे एक क्लास दिया करते हैं रात में क्वेश्चन आंसर। अब 500-700 वकील बैठे होते हैं और 20-30 जज मजिस्ट्रेट, उसके सामने मैं अकेला क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए। अब वकील बैठे हैं बहुत ज्यादा वकील, आप जानते हैं ना, मैं भी तैयार होके जाता हूँ कि मुझे इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, विस्तार से नहीं बहुत थोड़े में, किसी को नाराज भी नहीं करना है और कोई परेशान भी ना हो जाए, ऐसा उत्तर देना है। क्योंकि अगर हमारे उत्तर अच्छे नहीं होते तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में भी ये गड़बड़ हुई, बहुत धार्मिक वालों की हुई ना, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि सन्यासी थे, कुछ और भी लोग थे, उनको उत्तर अच्छे नहीं मिले, विशेष रूप से सर्वव्यापी की बात। भगवान तो रोज कहता है तुम मुझे गाली देते हो, लेकिन गाली देने वाले भी तो समझे ना कि गाली दे रहे हैं हम, वो तो समझते हैं हमसे अच्छा कौन महिमा करेगा तुम्हारी, तो गड़बड़ हो गई बहुत। तो एक वकील बहुत बहस कर रहा, मनुष्य पशु बनता ही है। मैंने ये सिद्धांत बताए तो वकील मेरी स्टेट ध्यान से सुन रहे थे, मैंने यही कहा तो अंत में जो स्मृति होती है उसके आधार से मनुष्य का अगला जन्म निर्धारित होता है, डिटरमाइंड होता है। तो किसी के मन में संकल्प होता है क्या? किसी जानवर का होता ही नहीं, फिर भी वो कहे नहीं बनता है। तो मैं सोचा इस बात पे ज्यादा बहस करने से क्या फायदा, मैंने कहा भाई हम तो तुम्हें मनुष्य देवता बनाना चाहते हैं, अगर तुम जानवर बनना ही चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, हमें उसमें कोई तकलीफ थोड़ा ही है। सब हंसे, ताली बजाई और वो बेचारा बैठ गया। तो लोग ये भी नहीं समझते कि कितनी अच्छी बात को बताई जा रही है, तुम पशु नहीं बनोगे लेकिन पशु बनने की इतनी उत्कंठा, तो वही बनो। तो सभी को बहुत गहराई से चिंतन करना है। दूसरा, हम और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं? चिंतन करना है मधुबन की श्रेष्ठ भूमि पर आकर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, जो हमसे नहीं होगा उसे छोड़ दें, उसके लिए परेशान ना हो। बाबा रोज मुरली में कहता है मुझे कितना याद करो, 8 घंटे। अब ये सुन के सभी मन ही मन सोच लेते हैं अपने बस का काम नहीं है, तो प्रयास भी वहीं छूट जाता है। 8 घंटे के बाद छोड़ दो, अब अपने से बात करो, हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने जीवन में योग को जोड़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति जोड़ सकता है, इसमें बिजी रहने की, इसमें और किसी झंझट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो आजकल की मुरली में एक और बहुत अच्छी बात आई है, मैं उसका थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ, आपको बहुत काम आएगा। परिस्थितियाँ और समस्याएं आने पर कुछ चीजों को हमें याद रखना ही है, ये पक्का कर लें, स्वयं पक्का करेंगे, यहाँ भट्टी में रहेंगे, कई क्लासेस सुनेंगे और उसके आधार से अपने जीवन के लिए कुछ चीजें सिद्धांत के रूप में लेकर जाना। बाबा का एक महावाक्य याद दिला देता हूँ आपको, जिसको मैं भी बहुत याद रखता हूँ, आप भी रखना। समस्याएं आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। बात बहुत छोटी है कि हमें ये नखरा हो जाए हमारा साथ कौन दे रहा है, लेकिन उलझ इतने जाते हैं। तो जीवन में विघ्न और समस्याएं आने पर हमेशा अपना बनाएं जीवन, अपनी स्मृतियों को ऐसा करें कि हमें कम से कम ये तो याद रहे भगवान साथी है। जब वो कह रहा है तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ मैं हूँ, तो हम क्यों ना बन जाएं? चिंतन करेंगे इन बातों पर। जब भगवान हमारी जिम्मेदारी ले रहा है तो हमें चिंतित होने की क्या जरूरत है, इनको अपने चिंतन में लाओ। तो बच्ची से तो 5 पॉइंट ऐसी अच्छी ले लेना जिनको रोज याद करना, सवेरे लिख लेना, रोज पढ़ना, ताकि वो जीवन में पक्की हो जाए, क्योंकि बाबा की मुरलियों में कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, अगर वो याद रहे तो जीवन की यात्रा सरल हो जाए, अनेक कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि एक रहस्य है, बातें बड़ी नहीं होती, आगे बोलो, मनुष्य सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देता है। अगर हम सोचे नहीं तो बातें छोटी हैं, बल्कि ये होगा बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, पसंद है, नोट कर लो ये बात। ये बात सभी को बहुत पक्की रखनी है, ज्यादा सोचने की आदत मनुष्य की समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। सभी अपने पर ध्यान वाले अंदर तक जाएं, कहीं हमारी ये नेचर तो नहीं है कि किसी ने 2 शब्द बोले और सारा दिन सोच रहे हैं। कहने वाला कह के खुश हो रहा है, उधर डांस कर रहा है, पिकनिक कर रहा है, अगर सुनने वालों को खाना नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि हमने उसको सीरियसली ले लिया। मेरा ये अपना अनुभव है, यहीं का, बहुत साल पहले का, जब मैं छोटा था और ये प्रसाद करता था, तो एक व्यक्ति बहुत बोलता था, वो मैं क्लास करा के गया, तब हमें छोटी छोटी क्लास मिलती थी, अभी क्लासेस ज्यादा नहीं मिलती थी, तो मेरे से आगे जा रहा था, मैंने देख, उसने मुझे नहीं देखा, तो वो मेरे कुछ कह कह के बड़ा खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था, पीछे मैं सुन रहा था। तो मैंने सोचा जब ये कहने वाला बहुत खुश है तो मैं सुनने वाला भी खुश रहूंगा, बस वहाँ बहुत सुंदर एक परिवर्तन हुआ। हम जब हर चीज को सीरियसली लेते हैं तो वो हमारी खुशी को छीनता है। हम अगर हल्के हो जाएं बहुत, काम करना इस खराब, बहुत हल्के हो जाओ तो बातें भी हल्की हो जाएंगी। जितने हम हल्के, बातें उतनी ही हल्की। इसको अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। एक बात और कहूंगा मैं, हालांकि मैं भट्टी की क्लास के लिए नहीं आया था। इस भट्टी से आप सभी और जो भी सेवाधारी भाई बहने यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन के लिए 5 सुंदर नियम बना लेना, जिन पर हमें अपना जीवन चलाना है सदा। जैसे देखो, हमारे कुछ नियम तो बन चुके हैं ना, हम ये भोजन नहीं खाएंगे तो नहीं खाते ना। माँ थोड़ा खा लेती होंगी, शादियों में जाती हैं तो आजकल बड़ा माल बनता है ना, वो लग जाते हैं स्टॉल्स, खा लेती है कोई कोई तो यहाँ थोड़ा ही दीदी देख ली है, ठीक है, खाते नहीं ना। किसी भी अच्छी खुशबू आ रही हो, रस मलाई बनी हो, चाहे रसगुल्ले बने हो, चाहे समोसों की खुशबू आ रही हो, खाते हैं या नहीं। भाइयों को समस्या होती होगी, शादियों में रिश्तेदारियों में जाते हैं, नहीं खाते, कोई कोई खा लेते। सिद्धांत है ना। ऐसे ही कुछ अपने दूसरे सिद्धांत, जिससे स्थिति बहुत अच्छी बने, वो यहाँ से बना के जाना। जैसे उदाहरण देता हूँ, भूख से हम बोलो, आगे खुद सोच लो, मुख से हम ऐसे बोल नहीं बोलेंगे, ऐसे में आप सोच लो कैसे। हाँ, वो आप सोच लेना कैसे। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। कल की बात है, एक माता का फोन आया, मैं ज्ञान में चलती हूँ और मैं अपने पति से बहुत दुखी हूँ, 20 साल हो गए शादी हुए। मैंने कहा क्या दुख है। कहा वो कभी भी मुझे छह वचन नहीं बोलता, अगर मैंने रोटी मेरे से जल गई तो उसको बोलना ही है, तू कुलक्षणी है। कहा मैं सुन सुन के अब हार मान गई हूँ, मेरी खुशी चली गई है, मैं क्या करूँ। अच्छी गल बात थी, मैं क्या करूँ, दिन में 5-7 बार सुनना पड़ता है, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी खराब से खराब बात। तेरी माँ भी ऐसी होगी, उधर कब बोल देता है माँ, उसको क्या पता कैसी है, वो उसको बोल देता है। ऐसे कई लोगों को आदत है, वो बड़ा खुश होता होगा, मैं बिल्कुल अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन उसे पता नहीं है कर्मों के सिद्धांत का। हम जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं, हमें भी वैसा ही व्यवहार कहीं ना कहीं से मिलेगा, इसे कोई नहीं बच सकता। इसलिए सभी अपने बोल को ऐसा बनाएं जैसे बोल हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे सिद्धांत बनाना है, बच्चे भी बनाएंगे सब, सिद्धांत बनाओ सभी। हमें इधर नहीं जाना है, हमें ये चीज नहीं देखनी है, ताकि कलयुग के प्रभाव से पूरी तरह युवक भी बचे रहें। नहीं तो आगे चल के जीवन में बहुत कठिनाई होती है। देखो, अपना भी जीवन दुखी होता है और परिवार भी सब दुखी हो जाता है। इसलिए 5 सिद्धांत कोई भी जो आपको पसंद आए बना देना। दूसरी बात बता देता हूँ, हमारा ये संगम योगी जीवन पर चिंतन के लिए नहीं है। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूँ। यही क्लास हो रही थी मधुबन वालों की, दादी जी क्लास कराया करती थी मास में 20 दिन में, तो बात पर चिंतन पे चलाई। दादी एक एक से पूछ रही थी, घरेलू क्लास होती थी, आखिर मैं इसे पूछ लिया, मैं इधर बैठा था, सूर्य तुम पर चिंतन करते हो सीधा सीधा। मैं तैयार तो था नहीं, मेरे मुख से निकल गया, दादी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बड़े खुश हुए लोग, मुझे पसंद था, मुझे क्या बोलना और क्या बोला मैंने, फिर मेरा ये मुख से निकला। और फिर मुझे बहुत पक्का हो गया, जैसे एक साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास में जाके नहीं बैठता, ये बैठता है कि देखो तो सही क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ, नहीं बैठते ना। हम पक्का कर दे, नियम बना दे, पर चिंतन मेरा सब्जेक्ट नहीं है, दूसरों को देखना मेरा सब्जेक्ट नहीं है। दूसरों को तो देखते आए युगों से, देखते देखते अपने को देखना भूल गए और गिर गए। चलेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे ना, जब देख के नहीं चल रहे दूसरों को देखने में लगे हुए हैं। तो ऐसे अपने जीवन के कोई भी पांच सिद्धांत भी बना लेना, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है ना सुंदर। इसलिए यूं ही किसी भी बात से दुखों में, अशांति में, व्यर्थ में, चिंताओं में, डर में बिताना नहीं है। और लास्ट एक बात और आपको कह देता हूँ, इसके फोन बहुत आते हैं मुझे। अभी भी एक छोटी कन्या मुझे फोन कर रही थी, मैं यहाँ आ ही रहा था। मुझे डर बहुत लगता है। मैंने कहा किससे डरती हो, छिपकली से? कहा नहीं, मैं ट्रेन में भी जाती हूँ, बहुत डरती हूँ एक्सीडेंट न हो जाए, कुत्ते कहीं दिख जाए, बहुत डरती हूँ काट न ले, डर ही डर है मेरे अंदर। तो छोटी सी विधि अपनाएंगे जिनको डर लगता है, यद्यपि हमें डराने वाली कई चीजें हैं। कौन डरा रहा है मनुष्य को? उसके जन्म जन्म के पाप। बाह्य कारण तो छोटे कारण बनते हैं, असली कारण है मनुष्य को भयभीत करेंगे जन्म जन्म के पाप। रोज सवेरे उठकर 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। विनाश काल में ये बात आपको बहुत काम आएगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। ठीक है, ओम शांति।